धवला पुस्तक सोलवी लेक्चर नंबर 12 ओम नमः सिद्धे ओम नमः सिद्धे ओम नमः सिद्धे ओम शुद्धात्मने नमः
प्रमोऽरिहन्ताम् नमो सिद्धानं नमो आयरियाणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सौवसाहूणम् मुनिसुवयदेशयरम् पणनीय मुनिसुवयं जिनं देवम् सङ्कममनोगमिनम् जहासुवं वर्णयिष्यामो।
आचार्य श्री वीरसेन स्वामी रचित यह धवला नामक टीका है, जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबली आचार्य। इसमें जो शेष 18 अनुयोग द्वारों की चर्चा चल रही है, उसमें से संक्रमण अनुयोग द्वार के अनुभाग संक्रमण का प्रकरण चल रहा है और 16वीं पुस्तक के पृष्ठ संख्या 400 पर हम आ गए, 400। यहाँ भुजगार का प्रकरण है और उसमें नाना जीवन की अपेक्षा बात चल रही थी। अब नाना जीवन की अपेक्षा अल्प बहुत्व चल रहा है, यानी एक एक में अपने अपने प्रकृति के अल्पतर ज्यादा है कि भुजागार ज्यादा है कि किस तरह से, उसकी चर्चा चल रही थी अलग अलग प्रकृतियों में देखते हुए। अभी हम नीचे के पैराग्राफ में आ गए हैं। नरक गति के अवक्तव्य अनुभाग संक्रामक स्तोक है। नाना जीवन की अपेक्षा उसके अवक्तव्य कब हो गए? उद्वेलन के बाद, उसका जब बंद होता है पंचेंद्रिय में आने के बाद। देखो नरक गति हो, देव गति हो, वैकृत शरीर अंगोपांग हो, एक इंद्रिय में लंबे काल तक रहने वाला जीव उन प्रकृतियों की उद्वेलना करता है, कोई भी एक इंद्रिय हो, तो उसकी सत्ता में कुछ नहीं था। और बाद में जब वो नया बंधक करेगा, जब पंचेंद्रिय में आएगा, भले संगी हो या असंगी हो, तो उसकी सत्ता शुरू हो जाएगी, तो संक्रमण शुरू हो जाएगा, उसको अवक्तव्य कहते हैं। तो वो सबसे कम है। भुजागार अनुभाग संक्रामक असंख्यात गुणे हैं, अल्पतर अनुभाग संक्रामक असंख्यात गुणे हैं, क्योंकि पंचेंद्रिय ही असंख्यात है, उसमें तो भुजागार अल्पतर चलता रहेगा। अवस्थित अनुभाग संक्रामक असंख्यात गुणे हैं। देव गति और वैकृत शरीर की प्ररूपणा नरक गति के समान है। मनुष्य गति के अवक्तव्य अनुभाग संक्रामक स्तोक है, ये भी ऐसा ही समझना। मनुष्य गति में भी उद्वेलना के पश्चात बंधने वाला है, बंध के बाद, आवली के बाद, वो उसका अवक्तव्य संक्रमण चालू हो जाएगा। अल्पतर अनुभाग संक्रामक अनंत गुणे हैं। देखो, नरक गति में भुजागार पहले लिया था और बाद में अल्पतर लिया था, और यहाँ तो मनुष्य गति के तो करने वाले तो निगोद भी है, सभी है, तो अनंत हो जाते हैं। भुजागार अनुभाग संक्रामक असंख्यात गुणे हैं, अवस्थित अनुभाग संक्रामक संख्यात गुणे हैं। उच्च गोत्र की प्ररूपणा मनुष्य गति के समान है, क्योंकि ये भी उद्वेलना वाली प्रकृति है और मनुष्य गति के साथ साथ इसकी भी उद्वेलना होती है। 401 पेज पर आए, अभी हम शुरुआत करेंगे। ये नाना जीवन की अपेक्षा अल्प बहुत्व चल रहा था। अनादि सत्कर्मिक नाम प्रकृतियां, अनादि सत्कर्मिक का अर्थ क्या है? सादी सत्कर्मिक कौन सी होगा? वो उद्वेलना वाली वगैरह। तो अनादि सत्कर्मिक नाम प्रकृतियों, निज गोत्र और पांच अंतरायों की प्ररूपणा ज्ञानावरण के समान है, यानी उसमें अवक्तव्य वाला बात नहीं होगी, हमेशा ही उसका संक्रमण चलेगा। जैसे ज्ञानावरण में हमने अल्पतर कम देखे थे और भुजाकार असंख्यात गुणे देखे थे, वैसे इनमें भी हो जाएगा। आहारक शरीर के अवक्तव्य अनुभाग संक्रामक स्तोक है। नया बंद करने वाले स्तोक होते हैं, यानी तो संख्यात होते हैं। भुजागार अनुभाग संक्रामक संख्यात गुण है। अल्पतर अनुभाग संक्रामक संख्यात गुण है, यानी भुजागार से अल्पतर ज्यादा है। अवस्थित अनुभाग संक्रामक असंख्यात गुण है। अवस्थित क्योंकि देखो देखो प्रशस्त प्रकृति है, उसका अनुभाग तो घटेगा नहीं, अनुभाग का तो कंडक होगा नहीं। जब तक है प्रकृति उद्वेलित हो जाएगी बाद में। क्यों कांडक घात स्थिति के होगे कि प्रशस्त प्रकृतियों के हो? उसके भी होगे।
स्थिति कांडक घात होते हैं
ज्यादा, तो अवस्थित बताए ना। देखो भुजागार और अल्प दोनों संख्यात गुणे कहे, यानी जब उनकी सत्ता है तो भुजागार भी होते अल्पतर भी होते हैं। या अल्पतर उसमें लेना है ना, उद्वेल ना करने वाले में अल्पतर ले सकते हैं।
तो वो असंख्यात गुणे हो जाएंगे ना।
नहीं, अवस्थित असंख्यात गुणे लिखा है ना यहाँ पर। पेज नंबर 399 जरा स्वामित्व ले लो। तीर्थंकर की बात बताई थी अर्थपद के बाद, स्वामित्व में उसका नाम नहीं लिया है। वो शादी सत्कर्मिक में ले लिया उसको। अल्पतर एक्चुअली कांडक होने के बाद ही होगा।
तो कांडक का सत्ता काल है, उसपे
कांडक के अंतिम समय में होगा ना,
वहाँ पे अल्पतर होगा।
और तब तक असंख्यात गुण है क्योंकि जब तक कांडक घात नहीं होता तो अवस्थित रहेगा। इस तरह उसका अर्थ लगा सकते हम। अभी तीर्थंकर नाम कर्म की प्ररूपणा, आहारक शरीर के समान है, उसमें अल्पतर नहीं हो गया क्योंकि आहारक शरीर जो है मिथ्यात्व में जाता है। हाँ, इस प्रकार अनुभाग भुजागार संक्रम समाप्त हुआ। अब यहाँ पदनिक्षेप की प्ररूपणा करते हैं। पदनिक्षेप यानी वो उत्कृष्ट पद, जघन्य पद, उसको पदनिक्षेप कहेंगे। यानी उत्कृष्ट वृद्धि, जघन्य वृद्धि, उत्कृष्ट हानि, इस तरह से उसको पद कहते हैं। ज्ञानावरण की उत्कृष्ट अनुभाग संक्रम वृद्धि, अकेले अनुभाग की वृद्धि नहीं है, अनुभाग का जो संक्रमण हो रहा था उसमें वृद्धि किसके होती है? जो तत्प्रायोग्य जघन्य अनुभाग सत्कर्म के साथ, तत्प्रायोग्य शब्द लिया क्योंकि एकदम अनुभ जघन्य से एकदम उत्कृष्ट तक नहीं जाएगा, उत्कृष्ट संक्लेश को प्राप्त हुआ है और तत्पश्चात जिसने उत्कृष्ट अनुभाग का बंद किया है उसके आवली मात्र काल के बीतने पर उसके उत्कृष्ट अनुभाग संक्रम वृद्धि और अवस्थान भी होता है। उत्कृष्ट वृद्धि के साथ अवस्थान जोड़ दिया, उसकी उत्कृष्ट हानि किसके होती है? जो उत्कृष्ट अनुभाग सत्कर्म से उत्कृष्ट अनुभाग का घात करता है, उसके अनुभाग कांडक का घात कर चुकने पर अनंतर काल में शेष अनुभाग सत्कर्म का संक्रम करते समय उत्कृष्ट अनुभाग संक्रम की हानि होती है। पेज नंबर 401 चल रहा है अपने यहाँ पर। इस प्रकार सब अप्रशस्त कर्मों के संबंध में कहना चाहिए, साता वेदनी की उत्कृष्ट अनुभाग संक्रम वृद्धि किसके होती है?
उत्कृष्ट अनुभाग का उत्कृष्ट घात कभी होगा? श्रेणी में होगा।
हाँ, श्रेणी में होता है ना उसका। साता वेदनीय के उत्कृष्ट अनुभाग संक्रम वृद्धि किसके होती है? वह एक समय अधिक आवली मात्र कालवर्ती अकषाय क्षपक के होती है। संक्रमण की बात है ना वहां पर, क्योंकि वहां प्रति समय विशुद्धि अनंत गुना बढ़ती है और वह एक समय से दूसरे अंतिम समय में जहां संक्रम होना है। वैसे बंद तो अंतिम समय तक है, परंतु यहाँ संक्रमण जो है आवली और एक समय में रुक जाता है। पेज नंबर 401 है। अभी इतना अनुभाग संक्रमण का विषय चल रहा है, उसमें भी नाना जीवों की अपेक्षा बात हो रही है और जो भुजकार ने बढ़कर अल्पतर अवस्थित वगैरह होता है उसमें जो पद है उत्कृष्ट पद और यानी उत्कृष्ट वृद्धि उत्कृष्ट हानि उसकी यहाँ चर्चा चल रही है। नीचे से छठी लाइन फिर पढ़ती हूँ। साता वेदनी की उत्कृष्ट अनुभाग संक्रम वृद्धि किसके होती है? वह एक समय अधिक आवली मात्र कालवर्ती अकषाय क्षपक के होती है। उसकी उत्कृष्ट हानि किसके होती है? ये आपका प्रश्न था ना। यहाँ तो साता वेदनी का है जो वो लागू नहीं होगा ज्ञानावरण में। हाँ, जो चरम समयवर्ती सूक्ष्म सांप्रायिक उपशामक के द्वारा बांधे गए साता वेदनी के अनुभाग को मिथ्यात्व को प्राप्त हो, उत्कृष्ट अनुभाग कांडक द्वारा घात कर शेष अनुभाग का संक्रम कर रहा है, उसके उसकी उत्कृष्ट हानि होती है। दसवें में अंत में उसने बांधा था चरम समय में, तो उपशम श्रेणी के योग्य बांधा, क्षपक जितना नहीं बांधा, फिर भी वो नीचे मिथ्यात्व में आ गया तो अनुभाग कांडक हो गया और कांडक के पश्चात हानि हो गई। उसका उत्कृष्ट अवस्थान क्रम से आएगा ना, क्रम से आएगा, पर मिथ्यात्व में गया है। हाँ, तब तक उसका कांडघात नहीं हुआ।
कांडघात बता रहे हैं वो देवगति और सभी के लिए लेना पड़ेगा। जो आठवें गुण स्थान में देवगति बांधकर उपशम श्रेणी से नीचे आया है, तो देवगति सभी कर्मों में कांडघात होगा मिथ्यात्व में जाने के बाद।
यहाँ सातावेदनी की बात चल रही है ना?
नहीं, नाम कर्म के लिए मैं पूछ रहा हूँ।
जो चल रहा है उसको सोचो पहले, क्योंकि देवगति का तो एक इंद्रिय में जाने के बाद उसका जो कुछ होगा, देव में जाने पर कैसे होगा उसका? जरूरी नहीं है ना। देखो, शेष अनुभाग का संग्रह हो गया, उसके उत्कृष्ट अवस्थान वृद्धि में होता है। वृद्धि कब देखी थी हमने? बारहवें के अंत। हाँ, यश कीर्ति और उच्च गोत्र की प्ररूपणा साता वेदनी के समान है। यहाँ एक मिनट, वृद्धि आवली प्लस एक समय बाकी थी तब उसकी वृद्धि हुई बारहवें गुणस्थान के, जब आवली और एक क्योंकि संक्रमण कब तक है, आवली और एक समय बाकी है तब तक है, बाद में वो संक्रमण अनुभाग का संक्रमण और बढ़ेगा नहीं। हाँ, क्यों
यशकीर्ति की उत्कृष्ट वृत्ति दसवें के अंत में लेना पड़ेगा, अवली प्लस एक समय बाकी है।
अरे अभी तो क्या पढ़ा आपने, यशकीर्ति उच्च गोत्र की प्ररूपणा साता वेदनीय के समान है।
नहीं, यशकीर्ति तो बनती नहीं है ना, तो उसको वहाँ पे भी उसकी वृद्धि हो जाएगी अनुपात की बारहवें गुणवत्ता।
बंद जब हुआ था तब तो उसका उत्कृष्ट अनुभाग का जिसको कहेंगे उत्कर्षण होकर रखा था, यानी अनुभाग सत्ता में उत्कृष्ट हुआ था।
नहीं, उत्कृष्ट वृद्धि के लिए मैं पूछ रहा हूँ।
अभी इसके समान ही बताएं तो उसमें क्यों डिफरेंस है? आप
तो बारहवें गुणस्तर में
नेचुरली साता वेदनी के समान ही बताया ना, फिर पढ़ना। देखो लास्ट लाइन क्या है, यश कीर्ति और उच्च गोत्र की प्ररूपना साता वेदनी के समान है, क्योंकि उसके लिए भी यही बात है ना कि अकषाय में एक आवली और एक समय बाकी है तब उसकी उत्कृष्ट वृद्धि हुई। हानि कब हुई? वही सूक्ष्म सांप्रदाय में बांधा है और नीचे आने पर उसकी हानि हुई। इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, आप क्यों डिफरेंस क्यों मान रहे हैं? कौन सा बंद? साता वेदनी का भी अनुभाग बंद वही रुकता है, बाद में जो एक समय वाला है उसमें ना स्थिति है ना अनुभाग है। अभी आते हैं 402 पर। यहाँ अर्थपद उत्कर्ष से साता वेदनीय के अनुभाग घात को मध्यम परिणाम वाला मिथ्या दृष्टि ही करता है, उसका घात न अतिशय विशुद्ध जीव ही करता है, वो तो बांधता है, और न अतिशय संक्लिष्ट भी, इसका कारण स्वभाव ही है, क्योंकि उसका मिनिमम भी करने वाला कौन है, तो मध्यम परिणाम वाला। अति तीव्र में तो, अति तीव्र संक्लिष्ट में तो असाता का बंध करेगा। इस प्रकार सब प्रशस्त कर्मों के संबंध में कहना चाहिए। अभव्य योग्य साता वेदनीय के उत्कृष्ट अनुभाग के अनंत बहुभाग को, देखो अभव्य योग्य उत्कृष्ट अनुभाग यानी मिथ्या दृष्टि जो उत्कृष्ट अनुभाग बांध सकता है इतना ही लेना उसको, अनंत बहुभाग को मिथ्या दृष्टि जीव मध्यम परिणामों के द्वारा घातता है। अभव्य योग्य उत्कृष्ट अनुभागों में से जितने मात्र स्पर्धकों को वह मध्यम परिणामों के द्वारा घातता है, अब इसकी कंपैरिजन कर रहे हैं, सूक्ष्म सांप्रदायिक द्वारा रचे गए उत्कृष्ट अनुभाग का भी घात करने वाला जीव उतने मात्र ही स्पर्धकों को घातता है। इस कारण भव्य अथवा अभव्य के द्वारा रचित उत्कृष्ट अनुभाग का मध्यम परिणाम युक्त मिथ्या दृष्टि के द्वारा अनुभाग कांडक स्वरूप से घात कर चुकने पर अनुभाग संक्रम की उत्कृष्ट हानि होती है, यानी वो तो भव्य हो या अभव्य हो, जो उत्कृष्ट अनुभाग का मध्यम परिणाम वाले मिथ्या दृष्टि ने घात किया है और घात होने अंतिम फाली के पश्चात उसका उत्कृष्ट हानि होगी, अनुभाग संक्रम की उत्कृष्ट हानि हुई। इसी प्रकार सब प्रशस्त कर्मों के संबंध में कहना चाहिए, कथन करना चाहिए। इस प्रकार उत्कृष्ट स्वामित्व समाप्त हुआ। मति ज्ञानावरण की जघन्य अनुभाग संक्रम वृद्धि किसके होती है? अभी जघन्य की बात है। हत समुत्पत्ति क्रम से जघन्य अनुभाग सत्कर्म को कर चुकने वाला जो सूक्ष्म एकेंद्रीय जीव अपने जघन्य सत्कर्म की अपेक्षा प्रक्षेप अधिक बांधकर, यानी थोड़ा जितना मिनिमम इतना अधिक बांधकर आवली अतिक्रांत उसका संक्रम करता है, उसके मति ज्ञानावरण की जघन्य अनुभाग संक्रम वृद्धि होती है। यानी मिनिमम वृद्धि कब होगी? तो हत समुत्पत्ति किया और थोड़ा मिनिमम अधिक करके बांधा, अनुभाग थोड़ा अधिक बांधा, उसको एक प्रक्षेप अधिक बांधा कहते हैं। आवली बीतने पर उतनी उसकी वृद्धि हो गई। उसकी जघन्य हानि किसके होती है? वह जिसके चरम समयवर्ती छद्मस्थ होने में एक समय अधिक आवली मात्र काल शेष रहा है उसके होती है। देखो, जो प्रशस्त प्रकृतियों में वहीं पर वृद्धि देखी और ये ज्ञानावरण अप्रशस्त है उसकी हानि देखी। कहां पर? बारहवें के अंत में। जघन्य अवस्थान जघन्य वृद्धि में देना चाहिए, यानी जो सूक्ष्म एकेंद्रिय ने जो जघन्य सत्कर्म किया फिर थोड़ा बढ़कर बांधा उसकी बात। इसी प्रकार, क्योंकि हानि के पश्चात तो उसका संक्रम ही रुक जाएगा, इसलिए हानि के पश्चात उसका अवस्थान नहीं ले सकते वहां पर। इसी प्रकार चार ज्ञानावरण और चार दर्शनावरण के भी कहना चाहिए। निद्रा और प्रचलना की भी प्ररूपणा मति ज्ञानावरण के ही समान है। विशेष इतना है कि जहां पर जघन्य स्थिति संक्रम है वहां पर उसकी जघन्य हानि कहना चाहिए। हमने देखा ना, उसका जब दो आवली और आवली का असंख्यात भाग शेष रहा था, भी बताया था। निकालो ये पेज 379 और 352, दो रेफरेंस लिख के रखे हमने लास्ट टाइम। पेज नंबर 379 जघन्य अनुभाग संक्रामक का स्वामी बताया था। हाँ, 352 पर भी है और यहाँ पर भी है। एक मिनट, वहां से शुरू हुआ था। अब निद्रा प्रचला का कहाँ आया? निद्रा निद्रा की बात आई यहाँ पर। थ्री फिफ्टी टू निकालो। जघन्य स्थिति संक्रम का स्वामी है, उसमें नीचे से तीसरी लाइन, निद्रा और प्रचला का जघन्य स्थिति संक्रम किसके होता है? जिसके अंतिम समयवर्ती छद्मस्थ होने में दो आवली प्लस आवली का असंख्यात भाग शेष रहा है उसके जघन्य स्थिति संक्रम होता है। और वो जघन्य हुआ है, वो जघन्य हानिपूर्वक हुआ है, इसलिए यहां पर ले लेना उसको। आगे बढ़ते पेज नंबर 403 नया पैराग्राफ। पांच अंतराय कर्मों की प्ररूपणा मति ज्ञानावरण के समान है। यानी एक समय और अवली बाकी रही थी बारहवें गुणस्थान में, तब निद्रा निद्रा यानी वृद्धि उसकी जो वो हत समुत्पत्तिक वाले को लेना। हाँ, वृद्धि हानि वहां लेना लास्ट में, और वृद्धि के बाद अवस्थान लेना, निद्रा निद्रा प्रचला प्रचला और स्थान वृद्धि की। जगन्य अनुभाग संक्रम वृद्धि किसके होती है? वह हत समुत्पत्ति क्रम से जघन्य अनुभाग सत्मर को कर्म को कर चुकने वाले सूक्ष्म एकेंद्रीय जीव के प्रक्षेप अधिक बांध कर आंवली अतिक्रांत उसका संक्रम करते समय होती है। उसी वृद्धिंगत अनुभाग को अंतर्मूर्त में घात कर संक्रम करने वाले की उसकी जघन्य हानि होती है। यानी इसकी हानि और वृद्धि वहीं पर लेना है सूक्ष्म एकेंद्रियों में। दोनों में से किसी भी एक में जघन्य अवस्थान होता है, वृद्धि के बाद भी और हानि के बाद भी हम कह सकते हैं। सम्यक्त्व प्रकृति की जघन्य अनुभाग संक्रम हानि किसके होती है? वह जिसके चरम समयवर्ती अक्षीण दर्शन मोह होने में एक समय अधिक आवली मात्र काल शेष रहे शेष है उसके होती है। उसकी जघन्य अनुभाग संक्रम वृद्धि नहीं है। उसका जघन्य अवस्थान किसके होता है? वह अंतिम अनुभाग कांडक की द्वितीय फाली में वर्तमान जीव के होता है। देखो उपांत कांडक के बाद उसकी हानि हुई, और हानि होने के बाद जो नया शुरू हुआ है कांडक, उसके द्वितीय फाली में उसका अवस्थान बताएगा। पहली फाली में उसकी हानि कहलाएगी, दूसरी फाली में अवस्थान कहलाएगा। सम्यक मिथ्यात्व की जघन्य हानि किसके होती है? चरम अनुभाग कांडक में कांडक के प्रथम समय में वर्तमान जीव के उसकी जघन्य हानि होती है। उसी के अनंतर समय में उसका जघन्य अवस्थान होता है, उसकी जघन्य वृद्धि नहीं है। क्योंकि इनका अनुभाग जब से वो तैयार थी तो उत्कृष्ट ही था, तो वृद्धि की बात नहीं होती उसमें। अनंतानुबंधी चतुष्क की जघन्य वृद्धि किसके होती है? देखो अनंतानुबंधी चतुष्क की विसंयोजना करके दो समय अधिक आवली संयुक्त जीव के अनंतानुबंधी चतुष्क की जघन्य अनुभाग संक्रम वृद्धि होती है। हमने देखा था कि अनुभाग उसका विसंयोजना की है, और बाद में जब संयोजना होती है तो शुरुआत में वो जघन्य बंद करता है, तो दो समय अधिक आवली वाला लिया। क्योंकि वृद्धि की कंपेयर करने के लिए पूर्व समय से बताना है ना, पहले समय में तो अवक्तव्य कहेंगे उसको, दूसरे समय में उसको वृद्धि कहेंगे। उसकी जघन्य हानि और अवस्थान किसके होती है? वे उनकी विसंयोजना करके अंतर्मूर्त संयुक्त जीव के होती है। यथा अभी उसी को बता रहे हैं, अनंतानुबंधी की विसंयोजना करके उससे संयुक्त जीव यानी संयोजना करने वाला, यद्यपि उत्कृष्ट वृद्धि के द्वारा वृद्धिगत होता है, तो भी उसके अंतर्मूर्त काल तक सूक्ष्म एकेंद्रिय के जघन्य अनुभाग सत्कर्म की अपेक्षा हीन ही अनंतानुबंधी कषायों का अनुभाग होता है। देखो देखो, भले वो विसंयोजना के बाद बांधने वाला वो तो संगी पंचेंद्रिय है, परंतु उसका अनुभाग एकेंद्रिय सूक्ष्म एकेंद्रिय के जो उसने हत समुत्पत्ति किया था उससे भी कम बनता है। वो उससे हीन रहकर घात भी प्राप्त होता है। इसीलिए अंतर्मुख संयुक्त उक्त जीव के द्वारा उसके अनंत बहुभाग का घात कर चुकने पर उसकी जघन्य अनुभाग संक्रम हानि होती है, यह सिद्ध है। अनंत भाग का, हाँ
बहु निकालना पड़ेगा,
बहु निकालना चाहिए। अनंत भागे घादी दे, अनंत वे भाग का घात करने पर, अनंत बहुभाग नहीं चाहिए, अनंत वे भाग का घात कर चुकने पर, क्योंकि पहली लाइन में प्राकृत है ना, अनंत भागे घादी दे, क्योंकि मिनिमम हानि होना है तो अनंत वहां भाग घात किया है। जघन्य अवस्थान, जघन्य हानि में देना चाहिए। अब तीन संज्वलन कषायों की, जघन्य हानि किसके होती है, उनकी जघन्य हानि, जघन्य अनुभाग बंध का संक्रमण करते हुए उसके अंतिम समय में वर्तमान क्षपक के होती है, उनकी जघन्य वृद्धि और अवस्थान किसके होता है, उनकी जघन्य वृद्धि और अवस्थान का कथन सूक्ष्म एकेंद्रिय के जघन्य अनुभाग सत्कर्म में करना चाहिए, यानी वो जो हत समुत्पत्ति करके फिर थोड़ा सा बढ़कर बांधा। पुरुष वेद की प्ररूपणा उपर्युक्त तीन संज्वलन कषायों के समान है। संज्वलन लोभ की जघन्य अनुभाग संक्रम हानि किसके होती है, वह अंतिम समयवर्ती सूक्ष्म सांप्रायिक होने में जिसके एक समय अधिक आवली मात्र काल शेष है उसके होती है। उसकी जघन्य वृद्धि और अवस्थान किसके होता है, वो एक इंद्रिय को लेना। जघन्य सत्कर्म की अपेक्षा प्रक्षेप अधिक बांधने वाले सूक्ष्म एक इंद्रिय के उसकी जघन्य वृद्धि और अवस्थान होता है। आठ नो कषायों की, इसमें पुरुष वेद को छोड़ देना। आठ नौ कषायों की जघन्य हानि किसके होती है, अंतिम अनुभाग कांडक के प्रथम समय में वर्तमान जीव के उनकी जघन्य हानि होती है, यानी क्षपना में जो अंतिम कांडक है तभी लेना। उनकी जघन्य वृद्धि और अवस्थान किसके होती है, वो एक इंद्रिय में अपने जघन्य अनुभाग सत्कर्म से प्रक्षेप अधिक अनुभाग को बांधने वाले सूक्ष्म एक इंद्रिय के उनकी जघन्य वृद्धि और अवस्थान होता है, यानी आवली बीतने पर उसका जघन्य वृद्धि सहित उसका संक्रमण बढ़ जाता है। सादी सत्व वाली, यानी जो उद्वेलना होती है और बाद में तैयार होती है, इसी सादी सत्व वाली नाम प्रकृतियों की जघन्य अनुभाग संक्रम वृद्धि किसके होती है। संयोजन के द्वितीय समय में जो अनुभाग बांधा गया है आवली अतिक्रांत उसका संक्रम करने वाले के उनकी जघन्य अनुभाग संक्रम वृद्धि होती है, क्योंकि पहले समय बांधने वाले के वो अवक्तव्य होगी, थी नहीं और होने लगी संक्रमण, और दूसरे समय में उसकी वृद्धि हुई। उनकी हानि और अवस्थान की प्ररूपणा अनंतानुबंधी कषाय के समान है। ये सब वो सूक्ष्म निगोद में लेने। अनादि सत्व वाली नाम प्रकृतियों की जघन्य अनुभाग संक्रम वृद्धि हानि और अवस्थान किसके होती है, अभी सूक्ष्म एकेंद्रिय में बताएंगे सब। अपने जघन्य अनुभाग सत्कर्म से प्रक्षेप अधिक अनुभाग को बांधकर आवली अतिक्रांत उसका संक्रम करने वाले सूक्ष्म एकेंद्रिय के उक्त प्रकृतियों की जघन्य वृद्धि होती है। उसको उस प्रक्षेप को अंतर्मूर्त घात कर, अंतर्मूर्त में चाहिए क्या, तम पक्षे एवं अंतो मुहूर्तेण घादीय, अंतर्मूर्त में या अंतर्मूर्त से, अंतर्मूर्त में ही चाहिए, अंतर्मूर्त में घात कर संक्रम करने वाले के उनकी जघन्य हानि होती है। दोनों में से किसी भी एक में उसका जघन्य अवस्थान होता है। निज गोत्र की प्ररूपणा अनादि नाम प्रकृतियों के समान है और उच्च गोत्र की प्ररूपणा अनंतानुबंधी के समान है, यानी उद्वेलना के बाद बांधने वाले के वो तो वो सब लगा लेना और उसकी वृद्धि के लिए तो एक इंद्रिय में ले लेना। इस प्रकार स्वामित्व समाप्त हुआ। नहीं, वृद्धि के लिए वहां लेना ना, संयोजना में लेना, वृद्धि में, और हानि में एकेंद्रिय में ले जाना। अब अल्पभूत्व की प्ररूपना की जाती है। यथा ज्ञानावरण की उत्कृष्ट अनुभाग संक्रम हानि स्तोक है, यानी हानि ज्यादा है कि वृद्धि ज्यादा है, ये बात है। तो उत्कृष्ट हानि कम है। ज्ञानावरण की उत्कृष्ट हानि कहाँ देखी थी हमने? बारह। वृद्धि और अवस्थान विशेष अधिक है। उत्कृष्ट वृद्धि कहाँ देखी थी? तत्प्रायोगिक जगन्य से वो उत्कृष्ट संक्लेश को प्राप्त हुआ वगैरह वगैरह। वृद्धि और अवस्थान विशेष अधिक लिया। नौ दर्शनावरणीय, असाता वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, नौ नौ कषाय, अप्रशस्त नाम प्रकृतियों, निज गोत्र और अंतराय के प्रकृत अल्प बहुत्व की प्ररूपणा ज्ञानावरण के समान है। यानी कौन सी कम है ज्यादा है, यहाँ स्वामित्व की बात नहीं है कि उत्कृष्ट जो उत्कृष्ट अनुभाग संक्रम हानि कम है और वृद्धि और अवस्थान विशेष अधिक है। साता वेदनी की उत्कृष्ट हानि स्तोक है, वृद्धि और अवस्थान अनंत गुणे हैं। हानि से वृद्धि अनंत गुणा है। वृद्धि हमने कहाँ देखे थे? बारहवें के लास्ट में देखा था। हानि मिथ्या तो में लिया था, उत्कृष्ट हानि वहां ली थी, जो दसवें में बांधा हुआ अनुभाग वहां उन्होंने घात किया था। सब प्रशस्त नाम प्रकृतियां और उच्च गोत्र की प्ररूपना सातावेदनीय के समान है। यानी हानि कम है, वृद्धि अनंत गुणा है। आतप नाम कर्म की प्ररूपना ज्ञानावरण के समान है। हानि कम है, वृद्धि विशेष अधिक है। आयु कर्मों की उत्कृष्ट हानि स्तोक है, वृद्धि और अवस्थान विशेष अधिक है। इस प्रकार उत्कृष्ट अल्पभूत्व समाप्त हुआ। उत्कृष्ट हानि कब होगी? घाता युष्क में होगी ना। वृद्धि और अवस्थान विशेष अधिक है, वृद्धि ने बढ़कर बांधने वाले की वृद्धि होगी।
आतप नाम कर्म में कैसे लेना हम लोग को?
आतप में जैसे ज्ञानावरण में क्या लिया? उत्कृष्ट संक्रम अनुभाग संक्रम हानि कम है, वृद्धि और अवस्थान विशेष अधिक है। यानी उत्कृष्ट वृद्धि और उत्कृष्ट अवस्थान वृद्धि के बाद होने वाला वो विशेष अधिक है, इसे इसमें लगाना है। अब जघन्य पद निक्षेप विषयक अल्प बहुत्व की प्ररूपणा करते हैं। ऊपर हमने उत्कृष्ट के बारे में देखा था, अब जघन्य के साथ कंपेयर करना है, यानी जघन्य वृद्धि जघन्य हानि इसकी चर्चा करनी है। मति ज्ञानावरण की जघन्य हानि स्तोक है, वृद्धि और अवस्थान अनंत गुण है। क्योंकि जघन्य वृद्धि कहाँ देखी थी हमने? वो सूक्ष्म एकेंद्रिय में, और हानि वहां बारहवें के अंत में देखी थी। जघन्य वृद्धि भी अनंत गुणा है। चार ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, चार संज्वलन, नौ नौ कषाय और पांच अंतराय की प्ररूपणा मति ज्ञानावरण के समान है। हमने देखा ना, एकेंद्रिय से भी वो अत्यंत हीन हो जाते हैं सब। अप्रशस्त कर्मों का अनुभव श्रेणी में आगे आगे बहुत कम हो जाता है। स्त्यान वृद्धि त्रय, देखो भले वो क्षपणा वाली प्रकृतियां है, परंतु अंतर करने के पूर्व में उसकी क्षपणा होती है, तो एकेंद्रिय में उसका अनुभव मिनिमम है, उससे भी क्षपणा के काल में नहीं है। तो स्त्यान वृद्धि त्रय, साता वेदनीय, असाता वेदनीय, मिथ्यात्व और आठ कषायों की वृद्धि हानि और अवस्थान तीनों ही तुल्य है। ये सब एकेंद्रियों में लेना है, सूक्ष्म एकेंद्रिय में। साता वेदनीय में हमने मिथ्या तो में आने वाला जीव लिया था। हाँ, वो उत्कृष्ट हानि थी। ये जघन्य में वहीं पर लेना ना उसकी साता असाता मिथ्या तो सबको एक साथ लिया था, निकालो उसका स्वामी निकालो, जघन्य का स्वामी पद निक्षेप में होगा ना। कहाँ गया, मिला कि नहीं मिला? पेज नंबर 404 पर या उसके एक पेज पहले पर देखना, जघन्य किसके होती है वृद्धि और हानि। साता साता की बात कहाँ लिखी अपन?
ये नहीं है, दिख मिल नहीं रही है।
स्वामी तो मैं लिया नहीं उसको। देखो ये स्वामित्व की प्ररूपणा 402 से शुरू हुई थी।
404 थी।
जघन्य वृद्धि या जघन्य हानि कहाँ पर? हाँ वो तो मति के अनावरण की है,
साता की अलग से।
साता असाता की हमको देखनी थी। निद्रा निद्रा प्रज्वल स्यान बुद्धि की बात बताई वहाँ पर, सम्यक प्रकृति की बताई, सम्यक मिथ्यात्व की बताई, अनंतानुबंधी की बताई,
तीन
संज्वलन की बताई, फिर संज्वलन लोक की बताई, 8-9 कषाय बताए, शादी सत्व वाली नाम प्रकृतियां, ऐसा लगता है। पहले हमने अनुभाग का ये वृद्धि की बात तो यहीं पर आएगी ना। 352 पर हमने क्या देखा था? कौन बांधता है ऐसा, जघन्य स्थिति संक्रम का स्वामी देखाना। जघन्य स्थिति संक्रम अंतिम समय की सहयोगी है, परंतु हानि वृद्धि का सवाल नहीं है वहां पर। स्थिति संक्रम थी, हम अनुभव की बात कर रहे हैं, वो स्थिति की बात थी। ये 377 के बाद 379 में होगा, जघन्य अनुभाग संक्रम का स्वामी। देखो देखो ये सब है ना, जघन्य करने में 380 पेज पर, साता असाता अनादि सत्कर्म नाम प्रकृति निज गोत्र का जघन्य अनुभाग संक्रम, अत समुत्पत्ति होकर जघन्य सत्कर्म से नीचे बांधने वाले के होता है, हानि वृद्धि वहीं पर होगी उसकी। हम कहां थे अभी, 400, हाँ जघन्य पद निक्षेप वाली बात थी ना, 380 यानी वो सब सूक्ष्म एकेंद्रिय में लेना है सब, वृद्धि हानि और अवस्थान तुल्य जब कह दिया ना, तो वहीं पर लेना सबको। पेज नंबर 405 पर आना अभी, हम देखो हम पढ़ रहे हैं, नीचे से दूसरी लाइन लेना। अनंतानुबंधी कषायों की वृद्धि स्थोक है, हानि वर अवस्थान अनंत गुणे है। ये वृद्धि जो है वो संयोजना करने वाले के लिए, और हानि और अवस्थान जो है वो एक इंद्रियों में लेना। सम्यक्त्व प्रकृति की हानि स्तोक है, हाँ, और अवस्थान अनंत गुणा है। यानी उसका अनुभव इतना अनंत गुना है, परंतु अवस्थान डायरेक्ट कैसा हुआ? अच्छा, अवक्तव्य के बाद अवस्थान हुआ, नहीं नहीं, सम्यक तो होते उसका उत्कृष्ट अनुभव होता है और वो कायम रहता है। पहले समय में अवक्तव्य कहेंगे, बाद में वो तो, हाँ। सम्यक मिथ्यात्व की हानि और अवस्थान दोनों तुल्य है। हानि वो अंतिम कांडक शुरू हुआ तभी होगी, और बाद में जब तक कांडक घात नहीं होता है तब तक अवस्थान होगा। इसमें भी वृद्धि नहीं बताइए, हाँ। चार आयु कर्मों की वृद्धि और अवस्थान दोनों ही तुल्य व स्तोक है, और हानि अनंत गुणी है। अनुभाग अनंत गुणा घट गया है।
सम्यक मिथ्यात्व में उद्वेलना करने वाला जीव सम्यक को प्राप्त करेगा तो उसकी वृद्धि नहीं होगी,
उसके अनुभाग में तो मैक्सिमम ही होता है ना
वहाँ पर। वहाँ पे जो सम्यक मिथ्यात्व में कांडक शुरू हो गए और उसने
कांडक स्थिति के हुए
अनुभाग
अनुभाग में तो वृद्धि होगी,
उतना ही मिथ्यात्व मतलब अनुभव कांड
मिथ्यात्व का अनुभव ज्यादा है।
नहीं तो सभी मिथ्यात्व में उद्वेलना करने वाला जीव कांडक नहीं करता
और उसका अनुभव कम क्यों होगा, वो अप्रशस्त प्रकृति है। नहीं समझे, अप्रशस्त प्रकृतियों का कांडक कब होगा, विशुद्धि में होगा। यानी जब तक उसकी सत्ता है उसका थ्रू आउट अनुभव मैक्सिमम रहता है, केवल सपना में उसका अनुभव मिनिमम हो जाता है। कांडघात होने पर वहां कांडघात होते हैं तब जाके उसके हानि होती है। सम्यक प्रकृति के लिए भी ऐसा ही है। नहीं तो वृद्धि माननी पड़ेगी। अगर उद्वेलना में कांडक होते थे तो उसमें उद्वेलना होते तो उपशम सम्यक तो होता तो वृद्धि हो जाती, ऐसा तो है ही नहीं है। ख्याल में है ना बस। हाँ देखो 406 पेज पर है, सादिक नाम प्रकृतियों और उच्च गोत्र की प्ररुणा। सादिक है नहीं, जो उद्वेलना हुई है और बाद में फिर उसका बंध होता है, जैसे देवगति है, नरक गति है, मनुष्य गति है, ये तो वैक्रिय शरीर अंगो पांग है वगैरह वगैरह, उच्च गोत्र है। आयु चतुष्क के समान है। अभी आयु में क्या देखा था, वृद्धि और अवस्थान स्तोक है, यानी जघन्य वृद्धि की बात है नहीं अपन, क्योंकि जघन्य वृद्धि कब हुई, जब उसकी संयोजना होती है तब। और हानि अनंत गुणी क्यों कही, क्योंकि वो एक इंद्रिय में होती है। अनादि नाम प्रकृतियां और निज गोत्र की प्ररूपना साता वेदनी के समान है। यानी वृद्धि हानि अवस्थान तुल्य होगा ना ये, क्योंकि एक इंद्रियों में होता है वृद्धि भी हानि भी और अवस्थान भी। तीर्थंकर प्रकृति की हानि नहीं है, वृद्धि और अवस्थान दोनों ही तुल्य है। इस प्रकार पद निक्षेप समाप्त हुआ। तीर्थंकर प्रकृति की वृद्धि कहाँ हुई, उसका जघन्य अनुभाग संक्रम तो जब बांधते समय लिया था हमने। मिनिमम वृद्धि जहां मिनिमम अनुभाग बढ़कर बांधेगा तभी मिनिमम वृद्धि होगी उसकी। हाँ चौथे गुण स्थान में लेके आगे बढ़ेंगे। वृद्धि संक्रम, अभी तो पद निक्षेप था तो वृद्धि और हानि की बात है, उत्कृष्ट वृद्धि उत्कृष्ट हानि, जघन्य वृद्धि जघन्य हानि। अब कहते जो वृद्धि हो रही है वो कितने प्रकार की होगी, क्या असंख्यात्व भाग बढ़ेगा कि संख्यात्व भाग के अनंत भाग कैसे बढ़ेगा। वृद्धि संक्रम में स्वामित्व की प्ररूपना की जाती है, तो इसमें वृद्धि में 6 प्रकार की वृद्धि संभव है, अनंत गुणा भी हो सकता है। तो 6 प्रकार की वृद्धि का स्वामी कौन है, उसका स्वामी अन्यतर संक्रामक है, कोई भी हो सकता है। 6 प्रकार की हानि का स्वामी कौन है, घात करने वालों में अन्यतर जीव उसका स्वामी है, क्योंकि घात करता है तभी उसकी हानि होती है। आयु को छोड़कर शेष कर्मों के अनुभाग स्थिति घात के बिना भी घाते जाते हैं। क्या कहा, आयु में जब उसका स्थिति घात होता है, स्थिति घात है ना, उसको हम घातायुष भी कहेंगे, स्थिति कट डाउन हो गई ना तभी उसका अनुभव घात होता है। परंतु अन्य कर्मों में स्थिति के इररिस्पेक्टिव अनुभव का घात होता है, परंतु 4 आयु कर्मों के अनुभागों का घात स्थिति घात के बिना नहीं होता। इस प्रकार स्वामित्व समाप्त हुआ। ये तो हमने पहले देखी थी, जब वो 33 सागर का बांधा, फिर 10,000 का किया, तो वो सब घात आयुष का होता है तो उसका हो जाता है। यानी जब तक वो स्थिति का घात नहीं करता है उतने काल तक उतना का उतना अनुभाग रहता है। ये बात हमने पहले देखी थी, वो पेज 83 383 पर देखी थी ये बात। अब आगे पढ़ते हैं। अब एक जीव की अपेक्षा काल की प्ररूपना की जाती है। किसमें वो काल? वृद्धि संक्रम में। पर्टिकुलर वृद्धि हुई या पर्टिकुलर हानि हुई तो लगातार कितने समय तक चलेगी, ये कह रहे। सब कर्मों की छह प्रकार की हानि के संक्रम का काल जघन्य व उत्कर्ष से एक समय मात्र है। क्योंकि हमने देखा था कांडक के अंतिम समय में उसकी हानि होगी। जब तक कांडक है उतना सत्कर्म अनुभाग सत्कर्म बना रहेगा, परंतु जहां अनुसमय परिवर्तन होता है प्रति समय, विशेष इतना है कि जिन कर्मों की प्रति समय अपवर्तना होती है उसका नाम क्या है? अनुसमयापवर्तन। क्योंकि विशुद्धि प्रति समय अनंत गुना बढ़ती है और अनुभाग जो अप्रशस्त का प्रति समय अनंत गुना घटता है, उनकी अनंत गुण हानि का संक्रम का काल जघन्य से एक समय उत्कर्ष से अंतर्मूर्त मात्र है। एक समय कैसे होगा? वहां मरने वाले को भी होगा या अन्यत्र भी गुणहानि तो हो ही सकती है। एक समय वाली अनंत गुणहानि तो अन्यत्र भी बन सकती है, पर लगातार अंतर्मूर्त अनुसमय अपवर्तन में उनके पांच वृद्धि संक्रमों का काल जघन्य एक समय और उत्कर्ष से अवली के असंख्यातवे भाग मात्र है। यानी अवली के असंख्यातवे भाग काल तक लगातार वो पर्टिकुलर वृद्धि हो सकती है। पांच वृद्धियां ने अनंत गुणा वृद्धि छोड़कर ना, अनंत गुणा वृद्धि संक्रम का काल जघन्य से एक समय और उत्कर्ष से अंतर्मूर्त मात्र है। यानी अंतर्मूर्त तक अनंत गुणा वृद्धि अनंत गुणा वृद्धि अनंत गुणा वृद्धि हो सकती है।
ऐसा
कुछ कहा नहीं, इन जनरल बात बताई है। अंतर्मूर्त तक तो वृद्धि 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 हो सकती है, अकेले श्रेणी में नहीं बताना है उनको, वो तो संकलेश परिणाम में भी हो सकता है ना कहीं पर। अभी इन्होंने इन जनरल बात की है, बाकी कुछ बताई नहीं है। अवस्थित संक्रम का काल भुजाकार अवस्थित संक्रम के समान है, क्योंकि भुजाकार होकर अवस्थित होता है तो भुजाकार के समान इसका काल है। इस प्रकार बुद्धि काल समाप्त हुआ। अब पर्टिकुलर बुद्धि में अंतर कितना पड़ सकता है, कितने काल का? एक जीव की अपेक्षा अंतर, पांच वृद्धियों और पांच हानियों का अंतर काल कितना है, और जघन्य से एक समय और अंतर्मूर्त। यानी वृद्धि के लिए एक समय का अंतर और हानि के लिए अंतर्मूर्त। तथा उत्कर्ष से असंख्यात लोक मात्र है। यानी परिणाम की अपेक्षा न इतने उत्कृष्ट संकलेश या उत्कृष्ट जो विशुद्धि ऐसा दोनों ही नहीं हुए। अनंत गुण वृद्धि अनंत गुण हानि और अवस्थान की प्ररूपणा भुजाकार संक्रम के समान है। इस प्रकार वृद्धि अंतर समाप्त हुआ। हाँ, जघन्य अंतर एक समय होता। देखो देखो निकालो, भुजाकार निकालो। भुजाकार संक्रम में कितना अंतर था? क्यों उन्होंने काल के आश्रय से अंतर को ले आना चाहिए इस तरह से बात की थी? क्योंकि ज्ञानावरण के भुजाकार अवस्थित का काल 266 सागर बताए, उतना इसमें अंतर बताएंगे। फिर उन्होंने भी वहाँ वहाँ अंतर की बात की नहीं थी, ऐसे ही छोड़ दिया था। इस प्रकार बुद्धि अंतर समाप्त हुआ। अब कहते हैं नाना जीवन की अपेक्षा भंग विषय, काल और अंतर का भी यहाँ कथन करना चाहिए, यानी पर्टिकुलर वृद्धि में अनंत गुणा वृद्धि और हानि करने वाले वगैरह इस तरह से, क्योंकि इतना असंख्यात लोक प्रमाण काल अंतर अगर बत्ता बीच में पड़ता है तो उसमें नहीं करने वाले जीव भी ले सकते हैं ना, असंक्रामक। वो एक जीव की अपेक्षा था, ये अन्य अनेक जीवों की अपेक्षा ये यहाँ लगाना है।
यहाँ पे इसे बता रहे हैं अनंत गुणा वृद्धि का काल असंख्यात लोक प्रमाण है वृद्धि और हानि का।
नहीं नहीं नहीं,
ये पांच वृद्धि और पांच हानि का अंतर बताया तब।
एक एक वृद्धि और एक एक हानि लेना अलग अलग से, अन्य अन्य पांच होती रहेगी ना, इस तरह से हो सकता है ना। उन्होंने उसकी बात नहीं उठा, केवल उसके समान है कहकर छोड़ दिया। अनंत गुण वृद्धि हानि और अवस्थान की प्ररूपना भुजगार संक्रम के समान कहकर छोड़ दिया उन्होंने। यानी अनंत गुणा बढ़कर कौन बांधेगा, तो संगी शायद संगी पंचेंद्रिय का जो अंतर है वही बताना पड़ेगा यहाँ पर, ऐसा लगता है। एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय में आने वाले के भी होगी, परंतु स्पेसिफिकली कुछ बताया नहीं ना उन्होंने, ना उसका स्वामी बताया बराबर, स्वामी भी नहीं बताया है।
तो सभी जीव देख सकते हैं
कहाँ पर? हाँ कोई भी अन्य, हाँ कोई भी है, परंतु वृद्धि और हानि के योग्य परिणाम में कुछ पता नहीं कैसे लेना उसको। अब नाना जीवन की अपेक्षा भंग विषय काल और अंतर का भी यहाँ कथन करना चाहिए, यानी वृद्धि में उन्होंने ये सारी बातें लगाई। पहले उन्होंने पद निक्षेप में भी लगाई थी है ना। अब यहाँ अल्पभूतों का प्रकरण है, पेज नंबर 407 पर है हम, ये जो नया पैराग्राफ है नीचे उसको हम पढ़ेंगे। इसकी सिद्धि के लिए यह प्ररूपना है यथा, इन्हें अल्प बहुत समझने के लिए कुछ वो बता रहे हैं। एक बंध स्थान में असंख्यात लोक प्रमाण घात स्थान होते हैं, यहाँ पांच प्रकार की हानियों को सिद्ध करके समाप्त कर अनंत भाग वृद्धि संक्रामकों का गुणकार असंख्यात लोक मात्र ऐसा कहना चाहिए।
तो घात स्थान वहाँ पे पांच प्रकार हानियों के
बंध स्थान में विशिष्ट अनुभाग बंध में
अनंत लोग असंख्यात लोक प्रमाण घात स्थान,
यानी घात करके वो उतना भी स्थान प्राप्त हो सकता है ना जो बंध के द्वारा हुआ है। क्या कहना चाहते पता नहीं लगा,
क्लियर ही नहीं लिखा है ना उन्होंने। एक बंध स्थान में असंख्यात लोक प्रमाण घात स्थान है,
घात स्थान यानी घात के द्वारा प्राप्त हुए स्थान, जितना बंध इतना बंध किया है उतना ही अधिक बांध कर उसके घात करके भी उतना स्थान प्राप्त हो सकता है, इतना ऐसा लगता है मुझे।
तो इसे ये पांच प्रकार की हानियों को सिद्ध करके
यानी इस प्रकार यहाँ पांच प्रकार की हानि सिद्ध करना है, यानी मान लेते ना एक बंद हुआ दूसरे का ऊपर थोड़ा बढ़कर बंद हुआ, उसके बीच वाले स्थान घात के द्वारा भी प्राप्त होते हैं। ऊपर का बंद का घात करके नीचे के स्थान प्राप्त हो सकते हैं ऐसा लगता है, उसको मन में रखकर आगे का पढ़ेंगे तो ख्याल होगा। इस यहाँ पांच प्रकार के हानियों को सिद्ध करके, या ऐसा भी लेगा ना कि जितना बंद हुआ है, एक बंद हुआ है उसके घात करके असंख्यात लोक प्रमाण अलग अलग स्थान तैयार होते हैं, ये उसका अर्थ ले सकते। नहीं, एक बंद स्थान में यानी जितना बंद हुआ है उसमें से असंख्यात लोक प्रमाण घात स्थान होते हैं, ऐसा भी उसका अर्थ कर सकते हैं। यानी वो बंद स्थान के पांच प्रकार की हानि पहले करना है। फिर से पढ़ते, यहाँ पांच प्रकार की हानियों को सिद्ध करके, यानी कोई विशिष्ट बंद किया उसमें से असंख्यात लोक प्रमाण घात स्थान हुए और वहां पांच प्रकार की हानियां हुई, उसको सिद्ध करके समाप्त कर अनंत भाग वृद्धि संक्रामकों का गुणकार असंख्यात लोक मात्र है ऐसा कहना चाहिए। यानी वहां की जो अनुभाग था उसको असंख्यात लोक से गुणा करने पर जो वृद्धि हुई वो अनंत वे भाग की वृद्धि हुई। अब यहां से अल्पभूत कह रही, ये पहले तो उन्होंने एक विशिष्ट अर्थ कहते हैं ना हमेशा अर्थ पद वगैरह सिद्धांत बता दिया। अब कहते मति ज्ञानावरण के अनंत भाग हानि संक्रामक स्तोक है, यानी अनंत भाग का हानि करके जो नया संक्रामक होगा वो स्तोक है। असंख्यात भाग हानि संक्रामक असंख्यात गुणे हैं, संख्यात भाग हानि संक्रामक संख्यात गुणे हैं, संख्यात गुण हानि संक्रामक संख्यात गुणे हैं, असंख्यात गुण हानि संक्रामक असंख्यात गुणे हैं, अनंत भाग वृद्धि संक्रामक असंख्यात गुणे हैं, असंख्यात भाग वृद्धि अनंत भाग वृद्धि पहले हुआ असंख्यात गुणा, असंख्यात भाग वृद्धि संक्रामक असंख्यात गुणे हैं, संख्यात भाग वृद्धि संक्रामक संख्यात गुणे हैं, संख्यात गुण वृद्धि संक्रामक संख्यात गुणे हैं, असंख्यात गुण वृद्धि संक्रामक असंख्यात गुणे हैं। अभी अनंत गुण हानि संक्रामक उससे भी असंख्यात गुणे हैं, अनंत लिया और अनंत गुण वृद्धि संक्रामक असंख्यात गुणे हैं, फिर अवस्थित संक्रामक संख्यात गुणे हैं। यानी वो एक बंद स्थान में इस तरह से शायद बताना चाहते हैं
संक्रमण की बात कर रही
है। संक्रमण कब होगा बंद से, यानी उसको घात करके हानि होगी। तो पहले में पहले यहाँ कौन कौन से लिए देखो, अनंत भाग हानि, असंख्यात भाग हानि, संख्यात भाग हानि, संख्यात गुण हानि, असंख्यात गुण हानि, बस ना ये पांच बताए। ये कितने गुना क्या है वो उन्होंने बता दिया जो बंद, वो ये सबसे कम है, अनंत भाग हानि करने वाले कम है, असंख्यात भाग हानि करने वाले असंख्यात गुणे हैं, आगे संख्यात गुणे बताए, और असंख्यात गुण वृद्धि करने वाले असंख्यात गुणे हैं। अब उससे देखो, पहले पांच पॉइंट्स देखो, अनंत भाग असंख्यात भाग हानि, संख्यात भाग हानि, संख्यात गुण हानि, असंख्यात गुण हानि। अब छठे नंबर पर कौन सा लिया, अनंत भाग वृद्धि। देखो ये पांच स्थान नीचे लिए, अब इसके बाद ये छठा है वो अनंत भाग वृद्धि वाला लिया, इससे ये असंख्यात गुना था, इससे भी ये ज्यादा है असंख्यात गुना। अनंत भाग वृद्धि के बाद असंख्यात भाग वृद्धि, ये सातवें नंबर पर वो असंख्यात गुना, संख्यात भाग वृद्धि संख्यात गुना, संख्यात गुण वृद्धि संख्यात गुणा, असंख्यात गुण वृद्धि असंख्यात गुणा, अनंत, देखो ये यहाँ का जो है ना अनंत गुणहानि यहाँ पर लिया, ये पांच के बाद ये 6, 7, 8, 9, 10 नंबर दिए थे, 11वां नंबर नीचे वाला अनंत गुणहानि वाला है, ये इससे भी असंख्यात गुणा लिए और इससे भी अनंत गुणी वृद्धा रखे वृद्धि वाले 12वें नंबर पर ऊपर लिए और 13वें नंबर पर अवस्थित संक्रामक संख्यात गुणे हैं, कहीं पर भी अवस्थित हो सकते हैं ना। ये कहते हैं कि पहले ये पांच करके फिर वृद्धि में चले जाना, फिर अनंत गुणहानि वाला यहाँ पर लेना और उससे भी असंख्यात गुणा अनंत गुणा वृद्धि वाला लेना। एक पर्टिकुलर बंध स्थान है उसमें इतने वृद्धि हानि के स्थान हो सकते हैं। बंध में हानि अनुभाग की हानि घात करके हानि होती है और नया बंध करके वृद्धि होती है।
तो हानि करने वाले जीव कम है और वृद्धि करने वाले जीव ज्यादा
है। हानि वाले भी वो 11वां नंबर यहाँ आए, हानि वाले भी यानी इनकी इन वृद्धियों से ये भी अनंत असंख्यात गुणा हो ही गए थे, वो अनंत वाला केवल ऊपर गया, ये कहना चाहते बस। यानी इसका अर्थ ये पांच प्रकार के हानि को सिद्ध करके यानी उसका अल्पभूत बता के ये उनको कहना है। यानी बीच में बंध स्थान लिए, फिर नीचे 1, 2, 3, 4, 5 नीचे लिए है ना, फिर 6, 7, 8, 9, 10 ऊपर लिए, नीचे 11वां लिया और ऊपर 12वां लिया, इस तरह से अल्प बहुत तो बताया, बस इतना है। और अवस्थित तो बाद में सब जगह अवस्थित तो कहीं पर भी हो सकता है। इसी प्रकार शेष 4 ज्ञानावरण उन्होंने एक मति ज्ञानावरण पर लगाया, 9 दर्शनावरण, 7 वेदनीय, 7 वेदनीय, अनादिक नाम कर्मो, नीच गोत्र, 5 अंतराय और मिथ्यात्व के भी विषय में प्रकृत अल्पभूतव का कथन करना चाहिए। सोलह कषाय और 9 नौ के अवक्तव्य संक्रामक स्तोक है। हम अभी यहीं रुकते हैं, अभी वो पुस्तकें लेने आए हैं ना, लक्ष्मी जी इनको बंद करना।
जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो पालो सोवाणी मस्तकनम सदा देत हो।
मैं